ओम शांति। भाई जी ने बहुत प्रभु मिलन के सुख बहुत ही अच्छी तरह से अनुभूति भी कराए, उसके विधि भी भाई जी बताए। कई प्रश्नों के उत्तर तो आपके भाई साहब बता चुके हैं, फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने दिए हैं वो भाई साहब के सामने रखते हैं। भाई साहब, पहला प्रश्न है, निरंतर योगी या कर्म योगी के लिए सही विधि क्या है और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए?
विधि तो सही होती है। देखिए, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, योग अति सरल सब्जेक्ट है, लेकिन संसार की सबसे गुह्य विद्या है। इसके लिए बहुत सरल चित्त, शुद्ध मन, बुद्धि गंदगी से मुक्त और बहुत अच्छा अभ्यास होना चाहिए। ये प्रश्न हर क्लास में आता है। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा उत्तर इसका न देके आपको उत्तर कहाँ मिलेगा वो बता देता हूं। हमने YouTube में, कोरोना काल में हम भी खाली थे तो बहुत सारी क्लासेज रिकॉर्ड कर दी हैं। YouTube मेरे नाम की खोलेंगे, गहरी बातें उसमें प्रेस करेंगे, 25 लेक्चर मिलेंगे जो संपूर्ण पुरुषार्थ के हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए, इजी योग कैसे हो, निरंतर कैसे हो, कर्म योग कैसे हो, प्योरिटी, अमृत वेला और दूसरी बातें मन की शक्ति पर है, उसमें भी 25 10-10 मिनट के लेक्चर हैं। मन की शक्ति का संपूर्ण ज्ञान, जो पढ़े लिखे हैं वो उसे सुन लें तो आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि हो जाएगी और आप दूसरों को भी मन की शक्ति के द्वारा समस्याओं का समाधान सिखा सकेंगे। उठते ही क्या क्या सोचें जो हर समस्या ठीक हो जाए वो उसमें है। टीचर बहने भी ध्यान दे के सुन लें तो बहुत काम आएगा आपको, तो वो YouTube पे आप देख लेना। योग, जब कर्म योग हम बनाते हैं तभी वो निरंतर हो सकता है। बिना कर्म योगी बने कोई योगी बनता ही नहीं है। इसलिए कर्म योग के कम से कम 25 तरीके उसमें बताए हैं, उनको सुनकर आप अपने जीवन में कर्मों से जोड़ लेना, योग का चार्ट बढ़े पहले दिन से बढ़ जाएगा। मैं बहुतों को कराता हूं पर्सनली भी। एक सूरत के भाई को कराया, बड़ा बिजनेसमैन है तो बहुत ही इधर उधर यात्राओं में रहता है, कहता टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा टाइम तो मिलता है आपको, प्लेन में बैठे होते हैं 2 घंटा क्या करते हो, टाइम नहीं है क्या? बहुत टाइम है। कार में बैठ के जाते हो इधर उधर 4-4 घंटे मिलते हैं, बहुत टाइम है। क्या करो, ये उसका प्लान बना दिया। पहले दिन से जीवन में चमक आ गई। अभी की घटना 1 मास पहले से ही हुआ। तो आप भी अपना प्लान बनाना, योग सहज हो जाएगा, सहज भी होगा, योग का चार्ट भी बढ़ेगा, कर्म योग भी होगा और जब योग अच्छा होता है तो जीवन सरल हो जाता है।
बहुत अच्छा भाई जी ने स्पष्ट किया। दूसरा प्रश्न है, जब अंत समय आत्मा शरीर छोड़ेगी तब बिंदु रूप में छोड़ना चाहिए कि फरिश्ता रूप स्मृति में रहे?
ये आपके हाथ में नहीं कैसे छोड़ना चाहिए, ये तो विधान है। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ही शरीर से निकलती है। तभी तो बहुत लोग बताते हैं कि हमारी चिता जल रही थी, हम ऊपर से देख रहे थे, तुम सब रो रहे थे, हम देख रहे थे। आत्मा आत्मा बन के निकलती नहीं, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है और जब आत्मा गर्भ में जाती है सूक्ष्म शरीर सहित।
दूसरा क्वेश्चन से, कोरोना काल में प्रथम द्वितीय लहर में बहुत सारे मनुष्य आत्माओं ने शरीर छोड़ा, ब्राह्मण आत्माओं, बाबा के बच्चों ने भी शरीर छोड़ा, क्या उनका जन्म हो रहा है या प्रेत आत्मा बनकर इसी लोक में घूम रही है?
जो बाबा के बच्चे, आप डरेंगे नहीं, जो बाबा के बच्चे हैं वो तो पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, बहुत सेवाओं में मदद करते हैं, योग भी लगाते हैं, जितना जिसका लगे वो तो तुरंत पुनर्जन्म ले लेते हैं, क्योंकि बाबा को आत्माओं की जरूरत है, जिसको हम एडवांस पार्टी कहते हैं, यानी देवताओं को जन्म देने के लिए उनके माँ बाप बहुत चाहिए, तो वो यहां से जा रहे हैं। बाकी जो सभी और लोग आत्माओं ने शरीर छोड़े हैं, उनके कर्म कैसे थे, कितने पाप कितने पुण्य, अंत में उनकी क्या मनोस्थिति थी, बच्चों को याद कर रहे थे, पत्नी को याद कर रहे थे, कोई भी तो सामने नहीं था। कोरोना की सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि मृत्यु के समय कोई नहीं, ऐसे में, और उनके संस्कार भी तो ठीक से नहीं हुए, कईयों को तो गड्ढों में डाल दिया ऐसे ही, तो पाप कर्मों के कारण, अंतिम संस्कार विधि विधान कुछ न होने के कारण, कोई देखने नहीं जा सका, ये आत्माएं भटक गई हैं। लेकिन जिनके पुण्य अच्छे थे वो थोड़ा समय भटक कर पुनर्जन्म ले लेती हैं। इसलिए जब से ये घटनाएं हुई हैं, इस संसार में भूत प्रेतों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। वो आपके घर के ऊपर भी आ सकते हैं। कौन कौन स्वागत करेंगे माताएं उनका? इसलिए आ सकते हैं, उन्हें शांति चाहिए। आपको डरना नहीं है, आप वाइब्रेशंस फैलाते रहें, उनको मिलते रहेंगे, आत्माएं शांत होकर, जब किसी का भी चित्त शांत हो जाता है उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो उनके चित्त को शांत करना ये योगियों का परम धर्म है, वाइब्रेशंस देकर। और आपका कोई गया हो, बहने भी तो बहुत गई, 350 बहने गई, बहुत गई, उनका तो भोग लगा, वो तो बाबा के पास पहुंची, तो उनके नाम से भोग लगवा देना, ब्रह्मा भोजन करवा देना, सबको इकट्ठा योग करा देना सेंटरों में, इससे उनका चित्त शांत हो जाता है, हमारा प्यार भी उन्हें पहुंचता है, शुभ भावनाएं भी पहुंचती हैं, वो पुनर्जन्म ले लेती हैं। ये गति है, इनको याद रखना है।
भाई जी, बाबा ने कहा कि एक एक मनुष्य आत्मा पर 10-10 प्रेत आत्माएं प्रवेश करेंगी, तो ऐसी घड़ी में हम बाबा के बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जो इनसे मुक्त रहे और दूसरों को भी बचा सके?
आप में नहीं करेंगे, निश्चिंत रहो, बिल्कुल। वो तो जो बहुत पाप आत्माएं है ना, जिसने जितनों को बहुत सताया है वो आ जाएंगी बदला लेने। अब देखो कहां जाते हो, छोड़ेंगे नहीं। कई लोग बड़े क्रूअल हैं दुनिया में, कईयों को तो दूसरों को मारने में सुख मिलता है, दूसरों को कष्ट देने से सुखी होते हैं, ये उनके साथ होगा। आप तो बहुत अच्छा अभ्यास करना, दो अभ्यास, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है, बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, बस आप सुरक्षित हैं। अपने घरों के ऊपर बाबा का झंडा भी लगवा देना बहनों से, ये झंडा भी बहुत सुरक्षा करेगा।
बहुत अच्छा। एक प्रश्न है कि ड्रामा में अगर हर चीज हर सीन फिक्स है, तो क्या मैं अपने मीठे शिव बाबा के ज्ञान से, उनकी श्रीमत से, खुद को अपने पुराने संस्कारों को बदल कर ड्रामा को चेंज कर सकते हैं?
ड्रामा को चेंज करना थोड़ा ही हुआ, संस्कारों को चेंज करना हुआ। सोचो ध्यान से, लोग ड्रामा को बदलना चाहते हैं। आपको पता है क्या ड्रामा में क्या है जिसे बदलेंगे? किसी को पता कल क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, तो बदलना कहां से? जो बदलेंगे वही तो ड्रामा है। इसलिए अपने संस्कारों को बदल दो, आपका ड्रामा बदल जाएगा। आपको लगेगा हमने ड्रामा बदल दिया, पर वो पहले से ही बदला हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, रात को कभी कभी बुरे स्वप्न आते हैं, डर भी जाते हैं, तो क्या योगाभ्यास करें, नींद को स्वप्न रहित कैसे करें?
एक तो जो मैंने बताया, चारों आभा मंडल बनाएं। आप अपने घरों को भी एक आभा मंडल में बांधा करें रोज, कभी भी दिन में एक बार, सवेरे रात को। समझ गए ना मास्टर? सर्व शक्तिवान का अभ्यास करके शक्तियों का घेरा बन गया घर के चारों ओर। पांच स्वरूपों का अभ्यास करके सोएं, कम से कम 15-20 मिनट आपको सोने से पहले देना है। पांच स्वरूपों का अभ्यास और बाबा का आह्वान, छह स्वरूप कर लिए, रोज करके सोएंगे, थोड़े दिन में डर भी खत्म, गंदे स्वप्न भी खत्म, थोड़े बहुत स्वप्न रह जाएंगे, वो तो मनुष्य को आते ही रहते हैं, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है, मेरी सेंसिटिव नेचर है, इसको कैसे बैलेंस करें? कभी मैं बहुत पॉजिटिव हो जाता हूं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो इसको हम किस तरह से सही करें, बैलेंस करें?
प्रश्न है, नेचर बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव माना ज्यादा भावुक है, भावुक व्यक्ति को गुस्सा भी जल्दी आता है, वो परेशान भी जल्दी होता है, तो खुश भी जल्दी होता है। कुछ चीज अच्छी मिल जाए नाचने लगेगा, कोई ले ले तो रोने लगेगा। ये भावुक व्यक्ति, सेंसिटिव फीलिंग वाले की पहचान है। ज्ञान मनन और स्वमान का अभ्यास, बस ये दो चीज अपनाएंगे। और ज्ञान मनन का अर्थ होता है रोज की मुरली से कुछ बातें सारा दिन में 4-5 बार याद कर लो, बस और कुछ नहीं। आज की मुरली जो चली उसमें से कोई 3-5 बातें लिख लो कागज पर, डायरी के अलावा कागज पर, आज ये याद रखेंगे, उसे अपने साथ रख लो, पढ़ लो या याद आ जाए याद करो। और स्वमान के अभ्यास बढ़ाओ, धीरे धीरे सेंसिटिव नेचर, भावुकता खत्म हो जाएगी और आप पावरफुल बन जाएंगे।
अगला प्रश्न है, आजकल संसार में मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है, तो कौन से हम योग अभ्यास करें?
ये सत्य है कि ये दौर अब मानसिक रोगों का चल पड़ा है। कोरोना ने भी बहुतों को मानसिक रोगों की गिफ्ट दे दी, डर चिंताएं जिसको एंग्जाइटी कहते हैं। अब किसी के प्रियजन चले गए उनको डिप्रेशन, किसी का धंधा ठप हो गया उसको डिप्रेशन, किसी के पास पैसे की कमी हो गई उनको डिप्रेशन, किसी का कोई देह छोड़ गया उसकी बहुत याद आती है, होता ही है ये परिवारों में, उससे मानसिक रोग पनप रहे हैं। मैं आप सभी को एक दो चीज कहना चाहता हूं। इस समय मनुष्य का मन और ब्रेन बहुत कमजोर हैं। मान लें सत्य को सभी, इसलिए कुछ बातें नोट कर लो जो लिख रहे हैं, उन चीजों को स्वीकार कर लेना है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। हम बदलने के लिए सिर मारते रहे कुछ नहीं होगा। सरल नेचर, किसने कुछ कहा ठीक है कोई बात नहीं, हल्के, क्यों कहा, बार बार बोलते हो, मेरे पीछे पड़े हो, ये नहीं, दो बोले तो हम 10 बोल दें। तीसरा, ईश्वरीय खुशी से अपने को भरो। मुरली में रोज खुशी और नशे के पॉइंट आते हैं, उन्हें नोट करो, उनका अभ्यास करो। ये तीन चीजें आपको किसी को भी मानसिक रोगों से बचाएंगी, ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करेंगी, चिंता करने की आदत को खत्म करेंगी। फिर भी किसी को बढ़ रहा हो कुछ, शुरुआत हो रही हो, ज्यादा सोचते हो, परेशानी रहती हो, एंग्जाइटी कहते हैं वो होता हो, तो सवेरे और रात को 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे उठते ही, सवेरे का अर्थ ही नहीं 5 बजे लिखेंगे, योग से भी पहले, भले 21 बार लिख लो, मजा आएगा, योग करेंगे। क्षमा याचना, जिनको भी हमने पूर्व जन्म में कष्ट दिया हो, मैं उनसे क्षमा चाहती हूं, चाहता हूं। बहुत 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 जरूरी, इसके महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं। क्षमा याचना करो, अनेक चीजें खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में खुशी आएगी, शांति आएगी, अनेक विघ्न नष्ट होंगे। और ज्यादा बढ़ गया हो तो ब्रेन को एनर्जी देना, आप जानते होंगे हाथ मल के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 2-4 बार किया और यहां रखा। दूसरे को भी कर सकते हो, आपके बच्चों को ऐसा कुछ हो गया हो कर सकते हैं। कई बच्चों के ऐसे केस थे, कम से कम 10 तो आए होंगे, बच्चे 5 साल के हो गए, 6 साल के हो गए, बोल नहीं रहे अब तक, खुला नहीं है मुख। एनर्जी दी ब्रेन को, मां ने, खुल गया, 3 मास में ही बोलने लगे। तो ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, सभी कर सकते हैं, इससे मानसिक रोग भी ठीक हो जाएंगे।
एक प्रश्न है, भाई जी योग करने जब हम बैठते हैं तो मेरे आंखों में आंसू क्यों आते हैं?
तो अच्छी बात है ना, आने दो, बाबा से प्यार के होंगे ना आंसू, आने दो उन्हें। कईयों के ब्रेन में चेंजेज भी होती हैं जब हम योग करते हैं, क्योंकि एकाग्र होते हैं ना। वैसे तो दुनिया में कोई मनुष्य एकाग्र होता ही नहीं ना, वो तो बुद्धि चल ही रही है, मन चल ही रहा है, लेकिन हम थोड़ा बहुत भी एकाग्र होंगे तो ब्रेन में कई रिएक्शन होते हैं, उससे कभी कभी आंसू आते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है, धीरे धीरे वो आप ही ठीक हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है, बाबा का बनने के बाद कई आत्माओं के स्वभाव संस्कारों का टकराव हो रहा है, तो इसमें हम क्या करें, क्या प्रयोग करें, योग का प्रयोग करें?
हम नहीं, करना तो उनको ही पड़ेगा, या हमारे करने से भी हो जाएगा? उत्तर दो ना, थोड़ा हो जाएगा। परिवारों में भी टकराव रहता है कईयों में। हम आप अपने घर के वाइब्रेशंस को थोड़ा योगयुक्त बनाएं, क्योंकि ऐसे केस में कहने से कुछ नहीं होता, कहने से तो वो आपसे भी लड़ने लगेंगे। इसलिए 10-10 मिनट बैठ के घर में योग करो। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसका बहुत अभ्यास करो। और सवेरे का जो प्रयोग मैंने सुनाया है, जब सब सोए हों, वो भी करना। और अगर आप में कुछ होता है ऐसा, तो अपने अहम को और क्रोध को खत्म करने का लक्ष्य बना लो। अहम, क्रोध और अहम से जुड़ा हुआ स्वार्थ, कहीं ईर्ष्या द्वेष, यही टकराव के कारण बनते हैं। इन पे ध्यान देंगे, कम हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि परिवार में ज्ञान में मैं अकेली हूं, अपने बच्चों को देखती हूं लड़ते झगड़ते, और मेरा बच्चा क्रोधी है, क्रोध की वजह से पढ़ाई में उसका कण एकाग्रता नहीं कर पा रहा है, तो क्या करें?
इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, सवेरे वाला ध्यान से करेंगे उसको। बच्चों के लिए आधा घंटा रोज योगदान भी करें। योगदान का सीधा अर्थ है योग करें आप, जैसे भी आपने योग सीखा है कमेंट्री से कर लें, और संकल्प करें इस योग की शक्ति से ये सभी बच्चे अच्छे हो जाएं। अपने घर में 5 बार बाप दादा का आह्वान करो, सभी को करना चाहिए, बहुत वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे, बाबा की एनर्जी फैलेगी और कई चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा लड़ाई से अप्रभावित होकर, लड़ाई का प्रभाव पड़ता है ना, पुरुषार्थ पे थोड़ा अटेंशन दें, दवाई क्या है उस पे अटेंशन देंगे, बीमारी क्या है इसका चिंतन नहीं, दवाई क्या है, समाधान क्या है, ये दो चीजें, दस दस मिनट बैठ के योग करो और पांच बार बाप दादा का आह्वान, ठीक होने लगेगा।
अगला प्रश्न है कि हम बाबा के बच्चे जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं तो कुछ लोग बीकेज पर इल्जाम लगाते हैं कि वे केवल पार्टिकुलर किसी व्यक्ति में सुधार कराते हैं, वो किसी एनजीओ या गरीबी भुखमरी के लिए क्या कर रहे हैं।
हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लक्ष्य होता है। कोई एक संस्था बनाता है, भाई हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई संस्था बनाता है, हम भूखों के लिए खाने पानी का इंतजाम करेंगे। कोई बनाता है, हम गरीबों के इलाज की व्यवस्था करेंगे, जैसे पीछे ऑक्सीजन देने का कईयों ने किया। ये ऑर्गेनाइजेशन भगवान ने स्थापित की है सबको पावन बनाने के लिए है। और जब आत्माएं पावन बन जाएंगी, विकारों से मुक्त हो जाएंगी, सत्कर्म करेंगी, उनकी गरीबी सदा काल के लिए दूर हो जाएगी। नहीं तो आपने देखा होगा कोरोना काल में राशन मुफ्त मिल रहा है और वही लोग शराब की बोतलें पैसे देकर खरीद रहे हैं महंगी। अधिकारियों तक भी रिपोर्ट पहुंच गई, उन्होंने नियम बना दिया जिसको मुफ्त राशन मिल रहा है उनके आईडी चेक करो, उनको शराब नहीं देनी है, और अगर वो शराब लेते हैं तो उनको मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, पैसा लो। ये हाल है मनुष्य का। मनुष्य के विचारों को बदलने से उसकी गरीबी बदलेगी, मनुष्य के जीवन को शुद्ध करने से अनेक परिवर्तन होंगे, केवल भोजन देने से नहीं। आज उन्हें खिला दो, कल फिर आ जाएंगे वो आपके पास, काम धंधा छोड़ देंगे कि मुफ्त में भोजन मिल रहा है। इसलिए मनुष्य को कर्मठ बनाना है। ठीक है, आवश्यकता में भोजन भी खिलाना पड़ता है, लेकिन ये बाबा की ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य है मनुष्य को परमात्मा से मिलाना, उसके अंदर के छुपे हुए देवत्व को जगाना। ये हम कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, ताली बजाएंगे भाई जी के लिए, स्पष्ट उत्तर भाई जी ने दिया। अगला क्वेश्चन है, अमृत वेले योग रोज कमेंट्री से सुनकर करते हैं, सुनकर करें या कुछ नया करें या केवल बाबा से रूहान करें?
तीनों करो, तीनों करो, कमेंट्री से भी करो, आपको रूहान करने की मन कर रही कमेंट्री बंद करो, बातें करो जिसमें आपको आनंद आए वो करो। अमृत वेला सुखद बीतना चाहिए, इसमें कोई विधान नहीं है कि इसी कमेंट्री से करना है। किसी को बिना कमेंट्री के मजा आ सकता है, कभी कमेंट्री न चलाओ। किसी को नींद आ सकती है, कमेंट्री चला लो।
अगला क्वेश्चन है, मेरी सर्विस रात्रि की ड्यूटी है तो अमृत वेले कैसे करें?
जब सो के उठो तभी अमृत वेला है आपका। अपने को टाइट नहीं करना है कि 12 बजे ड्यूटी खत्म हुई, सो रहे हैं 12:30 और 4 बजे उठ के सो रहे हैं। फिर सोएंगे ना 4 बजे उठ के भी योग में, उसे कोई फायदा नहीं। जब आप उठें सोकर, तब आपका बुद्धि मन फ्रेश होगा, तब योग करो, मजा आएगा।
अगला प्रश्न है, योग के प्रयोग में हम उस आत्मा को विजुलाइज करके बाबा की किरणें दे कि बाबा को संकल्प देकर बाबा की याद में खो जाए, कौन सी विधि?
देखिए, बाबा को संकल्प देकर बाबा की याद में खो जाना, कभी योग करना अच्छा और संकल्प करना, ये योग इस आत्मा के लिए, तो वो उसको चला जाएगा। किसी भी तरह से आप करें, दूसरे के लिए हमारी शुभ भावनाएं हो, उसे आत्मा देखें, तो वो शक्तियां उसको जाने लगती हैं।
अगला प्रश्न है, एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं, तो कैसे संभव हो सकता है कि हम एक नवजात शिशु को पता चल जाए कि वो अपने पिता के जायदाद का वारिस है?
अरे, आप जब जन्मे आपको पता चल गया ना हम भगवान के वारिस हैं, वो कह रहा है बाबा। आपने सोचा छोटा बच्चा गर्भ से बाहर आया उसको पता लगा? उसको नहीं, या उसके माँ बाप को पता चलेगा या हमें, हम जो बड़े हो गए हैं भगवान की गोद में आ गए उनको पता चला। बस टाइम हो रहा है भाई,
टाइम पूरा हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन।
चलो लास्ट पूछ लो।
साकार बाबा का पाठ पूरा हुआ, दादी जी ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त पाठ भी पूरा हुआ, तो अब आगे आने वाले समय में हम अव्यक्त मिलन कैसे करें और अनुभूति उसकी कैसे करें, क्या बाबा मुझे टच करता रहेगा?
आपको अब तक नहीं पता चला क्या इसका? अरे हमने भी अभी कराई, रोज सवेरे करो, जब चाहे करो, पाठ तो बदलेंगे ना, सदा ही एक साथ चलता है क्या संसार में भी? कुछ एक दिन में भी एक साथ चलता है क्या? एक साल में एक साथ चलता है? सब परिवर्तनशील है। भगवान ने भी अपना पाठ बदल लिया है और अब पाठ शुरू होगा साक्षात्कार का, धूम मचेगी। बाबा आता रहे, हम मिलता रहे, मौज करते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। उन्हें देख लिया, मैंने बहुत कुछ दे दिया ही नहीं, तो ठंडे ठाकुर होते जा रहे हैं। भगवान आता है, मिल लेते हैं, ओम शांति, अब थोड़ा इनको फ्री छोड़ो, ये उड़ें और मेरा नाम रोशन करें, तो अब शिव शक्तियों का, महान आत्माओं का पाठ चलेगा। थोड़े से बता दूं, 108 की माला के जो रतन हैं, उनमें पहले 25 मण के बहुत बहुत महान हैं, उनमें से कुछ जा चुके हैं, उनका भी पाठ चलेगा, और बाकी जो यहाँ जीवित हैं उनका पाठ चलेगा, तो इस सृष्टि पर जय जयकार होगी। तो बाबा से मिलन तो आप जब चाहे कर सकते हैं। मुरलियां कम थोड़ा ही है उसकी, रोज की मुरली जबरदस्त चीज है, जबरदस्त पालना है भगवान की, उस पालना को अनुभव करो, जीवन का आनंद लो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। भाई जी ने सभी प्रश्नों का सरल ढंग से उत्तर दिया, इसलिए कहते हैं जब भी योग के प्रयोग की बात आती है तो भाई जी याद आते हैं, जब भी स्वमान की याद आती है तो भाई जी याद आते हैं, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी के मार्गदर्शक भी हैं। तो जहाँ भाई साहब हैं वहाँ समाधान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई जी का।